समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
दोस्तों, आज सप्ताह का पहला दिन सोमवार है। ये वो दिन है जिसका इंतजार हम किसी नई शुरुआत के लिए करते हैं, चाहे वो किसी नई स्किल को सीखना हो या खुद को फिट रखने के लिए जिम जाना हो। और हम अक्सर इंतजार करते हैं और कहते हैं कि इस महीने की पहली तारीख से करेंगे या सोमवार से करेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि सोमवार से काम शुरू करने से उसकी शुरुआत सकारात्मक होगी, उसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। और वैसे तो हर दिन अपने आप में खास है और आपको किसी भी चीज की शुरुआत करने के लिए किसी विशेष दिन का इंतजार नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप उन लोगों में से हैं जो नए कामों को शुरू करने के लिए हफ्ते के पहले दिन का इंतजार करते हैं, तो वो दिन आ गया है। इसलिए वो नया काम जो आपने कई दिनों से सोमवार पर टाला हुआ था, उसे अब शुरू करने का वक्त आ गया है।
हर मुश्किल से टकराएंगे, टस से मस ना होंगे हम।
जी बिल्कुल, जमे रहिए और अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहिए। और आइए अब हम भी अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं और शुरू करते हैं कार्यक्रम आज सवेरे का आज का अंक। मैं हूं सरफिरोजी और आज मेरा साथ दे रही हैं अनीता आनंद। गुड मॉर्निंग अनीता।
गुड मॉर्निंग सरफिरोजी। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। वी ब्रिंग यू आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, wherein we give the latest in national, international news, metro city updates, as well as some historical information related to this day, that is the 19th of May. So let's begin with the headlines. Indian Space Research Organization, ISRO, has formed a committee to investigate the incident in which a PSLV rocket failed to place Earth Observation Satellite, EOS-09, into its intended orbit. ISRO Chairman V. Narayanan said that the committee held several rounds of discussions yesterday to identify the cause. ISRO failed to place its Earth Observation Satellite in orbit after a Polar Satellite Launch Vehicle, PSLV-C61 rocket, developed a fault minutes after the launch from Sriharikota. Dr. Narayanan said the rocket is a four-stage vehicle. The first two stages were completed successfully. However, an anomaly was observed in the third stage and the mission could not be accomplished, he said. After a 22-hour countdown, the rocket lifted off as planned at 5:59 a.m. yesterday and all systems were functioning normally until a point. Responding to a query, Dr. Narayanan said ISRO will proceed with its upcoming launches. He said the space agency has planned one mission every month this year. Indian Army has rejected the reports that claimed the ceasefire between India and Pakistan ended yesterday. According to the Indian Army, there were no Director General of Military Operation DGMO level talks scheduled between the Indian and Pakistani side on 18th of May. It said as far as the continuation of a break in hostilities as decided in the DGMO's interaction of 12th May is concerned, there is no expiry date to it. The last Director General of Military Operation level talks were held on 12th of May between India and Pakistan. During the talks, issues related to continuing the commitment that both sides must not fire a single shot or initiate any aggressive and inimical action against each other were discussed. It was also agreed upon that both sides consider immediate measures to ensure troop reduction from the borders and forward areas.
उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी का मुख्य राष्ट्रीय समन्वयक नियुक्त किया है। नई दिल्ली में पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में राष्ट्रीय स्तर की बैठक में यह निर्णय लिया गया। आकाश आनंद देश में बसपा के आगामी कार्यक्रमों की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। बैठक के दौरान सुश्री मायावती ने पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता और साहस की सराहना की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को आतंकवाद के खिलाफ मजबूत और प्रभावी कदम उठाना जारी रखना चाहिए, ताकि सरकार अपना पूरा ध्यान और संसाधन विकसित भारत की आकांक्षाओं को पूरा करने पर केंद्रित कर सके। उन्होंने कहा कि कश्मीर मुद्दे पर अमरीका या किसी अन्य तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को स्वीकार न करने की राष्ट्रीय सहमति का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी ने आगामी बिहार विधानसभा का चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा की है।
National Cadet Corps NCC has reached a significant milestone as its expedition team successfully scaled Mount Everest. The team comprised of NCC 10 NCC cadets along with 4 officers, 2 junior commissioned officers, 1 girl cadet instructor and 10 non-commissioned officers. The 10 cadets included 5 boys and 5 girls. We have a report.
The expedition was flagged off by Defence Minister Rajnath Singh from New Delhi on 3rd of April. Defence Ministry said that the selected cadets were novices chosen from across the country. They underwent a strict selection and training process. As part of their preparation, they conducted a pre-Everest expedition at Mount Abi Gamin. A team of 15 cadets was then selected to undergo winter and technical training at the Army Mountaineering Institute Siachen Base Camp. After months of training, 10 cadets were selected for the Mount Everest expedition. The team, comprising the youngest climbers with an average age of 19 years, became the center of attraction and were noted for their fitness and discipline during acclimatization training at various stages of the ascent. Sherpas of Nepal praised the NCC team for their physical readiness and morale. Despite facing challenging weather and terrain, the cadets successfully unfurled the tricolor and the NCC flag atop the world's highest peak. With Suparna's report, Chirag Jha, Akashwani News, Delhi.
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन में युद्ध की समाप्ति के लिए आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और नाटो देशों के विभिन्न नेताओं के साथ अलग अलग बातचीत करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वार्ता का विषय युद्ध को रोकना होगा। इस युद्ध में हर सप्ताह रूस और यूक्रेन के 5,000 सैनिक जान गंवा रहे हैं। रूस सरकार के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने पुष्टि की कि राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच टेलीफोन वार्ता के लिए तैयारियां की जा रही हैं। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रोम में कल अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों और यूरोपीय नेताओं के साथ मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जेलेंस्की ने कहा कि इस्तांबुल में हालिया वार्ता में रूस पर प्रतिबंधों, द्विपक्षीय व्यापार, रक्षा सहयोग तथा रूस के साथ कैदियों की अदला बदली पर समझौता हुआ।
In football, India beat Bangladesh 4-3 in a thrilling penalty shootout to retain the South Asian Football Federation SAFF Under-19 Championship 2025 in Ubia, Arunachal Pradesh. We have more from our correspondent.
The high-stakes clash saw the defending champions India strike early, with captain Singamayum Shami finding the net in the second minute. However, the celebrations were short-lived as Bangladesh levelled the score in the 61st minute. With both sides locked at 1-1 after full-time, the match headed into a nerve-wracking penalty shootout, and captain Shami stepped up once again and scored the winning penalty, sealing victory for India. Moving on to IPL cricket, Gujarat Titans defeated Delhi Capitals by 10 wickets in Delhi last night. Chasing a target of 200 runs, Gujarat's opening pair of Sai Sudarshan and skipper Shubman Gill remained unbeaten and made the tough run chase look easy. With this win, Gujarat Titans secured their spot in the playoffs. The result also paved the way for Royal Challengers Bengaluru and Punjab Kings to the playoff. The fight for the fourth spot will remain intact. And the inaugural edition of the Khelo India Beach Games will kick off today at the pristine Gokhla Beach in Diu. More than 1,000 athletes from across the country will compete in 6 medal events and 2 demonstration sports over 6 action-packed days. Vishnu PS, Akashwani News, Delhi.
और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के दौरान कर्नाटक, कोंकण और गोवा तथा केरल और आसपास के प्रायद्वीपीय भारत में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 5 से 6 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी गरज और बिजली के साथ तेज वर्षा होने की संभावना व्यक्त की गई है। आज से इस महीने की 22 तारीख तक पश्चिमी राजस्थान में लू चलने की संभावना है। आज ओडिशा में गर्म और आर्द्र मौसम रहने की संभावना है। विभाग ने बताया कि आज से कल तक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। उत्तराखंड में भी 24 मई तक हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अनीता, अपने श्रोताओं को देश दुनिया की खबर दे दी, तो अब क्यों ना महानगरों की ओर रुख किया जाए।
जी, the mangroves of Pichavaram stretches across 1400 hectares between the Vellar and Kollidam estuaries in Cuddalore district. Stand-up paddler Kumaran Mahalingam, founder of the Mangrove Bay Eco Camp, has been training visitors in kayaking and paddling at Pichavaram for 3 years. Kumaran says slow-moving and non-motorized boats and water sport activities help people appreciate the mangroves. Bichavaram is gaining attention as a site for stargazing too. Bhavanandi, founder of Star Wars, an organization that conducts astronomy workshops, says the region's clear skies make it ideal for night sky observations. He said that light and industrial pollution make stargazing difficult in places such as the Chidambaram. But Bichavaram has none of those drawbacks. Tamil Nadu government is preparing a comprehensive plan, which includes an incentive and support package and a new framework to collaborate with foreign universities. The government will provide internationally competitive salaries, startup research grants, relocation aid, including housing and fast-tracked visa processing. The vice chairman of Tamil Nadu State Council for Higher Education, MP Vijay Kumar, said that a registry of overseas Tamil researchers across various disciplines and domains. The council would identify centers of excellence and research chairs in state universities that can host these scholars. The council is developing a collaboration framework between state funded institutions and returning researchers. Karnataka Energy Minister K. J. George, who is also district in charge minister in Mikkam Mangaluru, has assured that steps will be initiated to mitigate raids by the wild elephants in the villages of Malnad region. He was speaking after a meeting with the senior officials of the Forest Department in Chikmagaluru. He agreed that elephant menace is prevailing in Chikmagaluru, Shivamogga and Hassan districts. He recommended a comprehensive plan involving habitat restoration, community engagement and revamping wildlife corridors to address the issue of elephant attacks across all these districts. The Deputy Chairman of the Legislative Council, M.K. Pranesh, informed the Minister that around 55 elephants are roaming in 4 to 5 herds in Mudigere Taluk and causing significant damage to the crops and coffee plantations, apart from causing panic in the residential areas. The Chikmagaluru District Officer, Ramesh Babu, informed that there are 35 elephants in the Chikmagaluru range, 125 in Koppa range and 400 in the Bhadra Wildlife Division. He added that some of these elephants are fitted with caller IDs and their movements are tracked through the transmitting signals. Miss World contestants got a glimpse of Telangana state development journey during their visit to the Police Integrated Command and Control Centre, TGI, CCC and the State Secretariat yesterday. As part of the state's efforts to promote tourism, the contestants learnt about the safety measures, rich culture and the history of the state. At the TGICCC, the contestants have been introduced to the advanced safety and emergency response systems that monitor the state through various CCTV cameras. They were shown how data from different departments is brought together in one system to respond quickly during the emergencies, traffic jams or disasters. A live demonstration of traffic monitoring, facial recognition and the T-Safe app were presented. They were welcomed by mounted police, a pipe band, a canine dog show and an arms exhibition while giving the contestants a closer look at the advanced weaponry and protective gear used by the Telangana police. Contestants from several countries including India, Sri Lanka, Indonesia and Wales participated in the floral tribute. And now for Metro News from Delhi, Mumbai and Kolkata, over to Sir Firozi.
जी बिल्कुल अनीता, सबसे पहले दिल्ली की खबरें देंगे और दिल्ली की जो पहली खबर है वो ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई है और जब हम बात करते हैं इस अभियान की तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तरह भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू कर पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों को तबाह किया उससे ये साबित हुआ है कि देश अपने ऊपर होने वाले ऐसे किसी भी हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा और जहां एक और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने आतंक खत्म करने की अपनी प्रतिबद्धता दिखाई वहीं इस अभियान के माध्यम से हमने भारत की सुरक्षा प्रणाली के आपसी समन्वय को देखा उसकी शक्ति को देखा और इसी शक्ति के माध्यम से देश ने ऑपरेशन सिंदूर में सफलता प्राप्त की इसी का जश्न मनाने और सेना के प्रति एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए हम सभी जानते हैं कि देश भर में अलग अलग जगहों पर तिरंगा यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है और कल भाजपा ने भी राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में तिरंगा विजय यात्रा का आयोजन किया दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खजूरी चौक से सिग्नेचर ब्रिज तक चली तिरंगा यात्रा में शामिल हुई। इसके अलावा उत्तर पश्चिम दिल्ली, नजफगढ़ और नई दिल्ली में भी यात्राएं निकाली गई। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए दिल्ली के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों के पराक्रम और प्रधानमंत्री मोदी के निर्णय लेने की शक्ति को नमन करने के लिए हजारों लोग यात्रा में शामिल हुए।
ये यात्रा है भारत की सेना के पराक्रम को नमन करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने निर्णय लिया और सेना दुनिया की पहली सेना बन गई जिसने एक न्यूक्लियर पावर के एयर बेसेस को उड़ा दिया और इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके आतंकवादियों को मारा है। इस सेना के पराक्रम को हम नमन और अभिनंदन कर रहे हैं और पूरा देश कर रहा है, ये इस देश का उत्साह है।
दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में सूक्ष्म खाद्य उद्यमों और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना के अंतर्गत इंक्यूबेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार की घोषणा की है। इस योजना के अंतर्गत दिल्ली कौशल एवं उद्यमिता विश्वविद्यालय के माध्यम से शहर के झंडेवालान और वजीरपुर इलाके में 2 इंक्यूबेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। दिल्ली के उद्योग मंत्रालय के अनुसार भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित इस परियोजना की कुल लागत 4.5 करोड़ रुपए है। और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने कल हाईस्कूल की लड़कियों के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित का करियर अपनाने की प्रेरणा देने के उद्देश्य से विशेष मेंटरशिप कार्यक्रम मनस्वी आयोजित किया। इसका उद्देश्य इन विषयों में करियर अपनाने की दृष्टि से छात्राओं की संख्या बढ़ाने का प्रयास करना है। मनस्वी के अंतर्गत इन छात्राओं के विचारों को मंच प्रदान किया जा सकेगा जिससे उनका मनोबल भी बढ़ेगा। और अब बात मुंबई की, जहां एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाने और देशभक्ति, एकता और गौरव को बढ़ावा देने के लिए कल मुंबई में तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया गया। शिवसेना ने पार्टी के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में रैली का आयोजन किया। सांसद रविन्द्र वायकर, शिवसेना प्रवक्ता शीतल महात्रे, पार्टी सचिव सिद्धेश कदम सहित कई पार्टी नेता, कार्यकर्ता और लोगों ने इसमें भाग लिया। और राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान और राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला के साथ 20 और 21 मई को मुंबई में गोरेगांव के नेस्को सेंटर में CSIR स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन कर रहा है। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम का उद्घाटन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह करेंगे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस सम्मेलन में समुद्री रोबोटिक्स, बायो मैन्युफैक्चरिंग और पर्यावरण इंजीनियरिंग में अभूतपूर्व नवाचारों को प्रदर्शित किया जाएगा। भारतीय खाद्य निगम ने अगस्त 2025 के पहले सप्ताह से शुरू होने वाली खुला बाजार बिक्री योजना के अंतर्गत चावल की बिक्री की घोषणा की है। 21 और 22 मई 2025 को होने वाली आगामी ई नीलामी में कुल 10,000 मीट्रिक टन चावल की नीलामी होगी। इच्छुक खरीदार खुद को FCI के ई नीलामी सेवा प्रदाता एम जंक्शन सर्विसेज लिमिटेड के साथ सूचीबद्ध कर सकते हैं और स्टॉक के लिए बोली लगा सकते हैं। और एक खबर कोलकाता से, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 3 दिवसीय उत्तर बंगाल के आधिकारिक दौरे पर आज सिलीगुड़ी पहुंचेगी। उनके दोपहर तक सिलीगुड़ी पहुंचने की उम्मीद है। और श्रोताओं, अब आपको देते हैं महानगरों के मौसम की जानकारी। शुरुआत कर रही हैं राजधानी दिल्ली से। दिल्ली में बारिश के साथ आंधी आने की संभावना है। आज का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। वहीं मुंबई में दोपहर या शाम के समय गरज के साथ बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। न्यूनतम तापमान के 27 डिग्री और अधिकतम तापमान के 33 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और गरज के साथ बिजली की संभावना है। न्यूनतम तापमान के 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान के 35 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अनीता, हमने अपने महानगरों की जानकारी दे दी मौसम की, तो अब आप बताइए कि बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई में मौसम कैसा रहने वाला है।
चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ पार्टली क्लाउडी स्काई विद पॉसिबिलिटी ऑफ मॉडरेट रेन और थंडरस्टॉर्म। द मिनिमम टेम्परेचर वाज 26 डिग्री सेल्सियस एंड द मैक्सिमम विल बी अराउंड 33 डिग्रीज। बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ पार्टली क्लाउडी स्काई विद पॉसिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ थंडर लाइटनिंग। The minimum temperature was 21 degrees Celsius and the maximum will be around 31 degrees. Hyderabad is expected to have a partly cloudy sky with 1 or 2 spells of rain or thunder showers. The temperature will hover between a minimum of 26 degrees and a maximum of 36 degrees Celsius.
Mm-hmm. श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे सरफिरोजी और अनीता आनंद के साथ। और कार्यक्रम में अब वक्त है अनीता की इतिहास के पन्नों को थोड़ा पीछे पलटा जाए और जाने कि आज का दिन यानी 19 मई का दिन इतिहास में किस तरह दर्ज हो गया। तो सबसे पहले बात साल 1885 की। आज ही के दिन 1885 में जर्मन चांसलर बिस्फॉक ने अफ्रीकी देश कैमरून और टोगोलैंड पर कब्जा किया। वहीं 1892 में आज ही के दिन बहुचर्चित नाटककार और कवि ऑस्कर वाइल्ड जेल से रिहा किए गए। 1936 में 19 मई को ही ब्रिटेन के आविष्कारक रॉबर्ट डेटसन वॉट ने रडार बनाया।
एंड इन द ईयर 1958 रॉजर्स एंड हैमरस्टाइन साउथ पैसिफिक साउंडट्रैक एल्बम reached number one on the Billboard charts and remained there for 31 consecutive weeks. In the year 1971, the Mars 2, an uncrewed space probe of the Mars program, that was a series of uncrewed Mars landers and orbiters, was launched by the Soviet Union. In 1995, Indian-American ophthalmologist Bala Murali Krishna, or Bala Ambati, earned the title of one of the youngest doctors by entering the Guinness Book of World Records. In the year 2016, 66 passengers and crew flying from Cairo to Paris on Egypt Air Flight A04 disappeared over the Mediterranean Sea. Today marks also the inaugural World Fair Play Day, a celebration dedicated to promoting sports practiced in the spirit of friendship, solidarity, tolerance, inclusion and non-discrimination. Fair play fosters mutual respect among the participants, teaching us to value and honor one another.
और अब चलते हैं उन हस्तियों को याद करने की ओर जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिवस है। आज सबसे पहले याद कर रहे हैं जमशेद जी नुसीर वानजी टाटा जी को। भारत के विश्व प्रसिद्ध औद्योगिक घराने टाटा समूह के ये संस्थापक थे। भारतीय उद्योग के पिता के रूप में जाने जाने वाले जमशेद जी ने भारतीय औद्योगिक क्षेत्र में जो योगदान दिया वो असाधारण और बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्होंने भारतीय औद्योगिक विकास का मार्ग ऐसे समय में प्रशस्त किया जब उस दिशा में केवल यूरोपीय, विशेष रूप से अंग्रेज ही कुशल समझे जाते थे। इन्होंने सन 1868 में दादा समूह की स्थापना की। वर्ष 1874 में इन्होंने 15 लाख रुपए की पूंजी से एक कंपनी शुरू की। सुदूर पूर्व और यूरोप में अपने शुरू के व्यापारिक उद्यमों के बाद जमशेद जी टाटा ने वर्ष 1868 में 29 साल की उम्र में 21,000 रुपए की पूंजी के साथ एक निजी फर्म प्रारंभ की। 1902 में इन्होंने टाटा स्टील की स्थापना की और 1912 में अपना पहला उत्पादन किया।
Today is also the birth anniversary of Nora Ephron, the American journalist, writer and filmmaker, born on this day in 1941. She is best known for writing, directing rom-coms and received numerous accolades, including a British Academy Film Award, as well as nominations for 3 Academy Awards, a Golden Globe and a Tony Award, and 3 Writers Guild of America Awards. Ephron started her career writing the screenplays for Silkwood, Heartburn, When Harry Met Sally, the last of which earned the BAFTA Award also for Best Original Screenplay and was ranked by the Writers Guild of America as the 40th greatest screenplay of all time. She made her directorial film debut with comedy drama This Is My Life, followed by romantic comedies Sleepless in Seattle and Michael, You've Got Mail, Bewitched, and the biographical film Julie and Julia. Ephron's first produced play, Imaginary Friends, in 2002, was honored as one of the 10 best plays of 2002-3 New York theater season. I am playing a snippet of a song from the film Sleepless in Seattle by Celine Dion. And Ephron received a posthumous Tony Award nomination for Best Play for Lucky Guy. She also wrote columns for Esquire, Cosmopolitan and The New Yorker.
आज हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की भी पुण्यतिथि है। ये हिंदी के शीर्षस्थ साहित्यकारों में से एक थे। ये उच्च कोटि के निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक, चिंतक और शोधकर्ता थे। द्विवेदी जी का व्यक्तित्व गरिमामय, चित्रवृत्ति उदार और दृष्टिकोण व्यापक है और इनकी हर रचना में इनके इस व्यक्तित्व की छाप देखी जा सकती है। इनकी मुख्य पुस्तक रही हिंदी साहित्य की भूमिका। इसके अलावा सूर साहित्य, बाणभट्ट, कबीर, अशोक के फूल भी इनकी मुख्य रचनाओं में गिने जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए 1957 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।
टुडे इज द बर्थडे ऑफ पीटर जेनिस ब्लैनफोर्ड टाउनसेंड, बोर्न ऑन दिस डे 1945, द इंग्लिश म्यूजिशियन। ही इज द को-फाउंडर, गिटारिस्ट एंड सेकंड लीड वोकलिस्ट, principal songwriter and leader of The Who. One of the most influential rock bands of the 1960s and 70s, his aggressive playing style, poetic songwriting techniques and authorship of two rock operas with The Who as well as other projects have earned him critical acclaim. Townsend has written more than 100 songs for 12 of The Who's studio albums. These include concept albums, the rock operas Tommy and Quadrophenia, plus popular rock radio staples such as Who's Next, which was released in 1971, as well as dozens more that appeared as non-album singles, bonus tracks also, and tracks on rarities compilation albums such as Odds and Sods. He's also written more than 100 songs that have appeared on his solo albums, as well as radio jingles and television themes. I'm playing Face to Face, performed by him. He was ranked number 10 in the Gibson.com's 2011 list of top 50 guitarists and number 37 on Rolling Stone's 2023 list of 250 greatest guitarists of all time. He and Roger Daltrey received the George and Ira Gershwin Award for Lifetime Musical Achievement at UCLA in May of 2016.
आज विजय तेंदुलकर की पुण्यतिथि है। इन्हें आधुनिक भारतीय नाटक और रंगमंच के विकास में महत्वपूर्ण माना जाता है। 5 दशक से ज्यादा समय तक सक्रिय रहे तेंदुलकर ने रंगमंच और फिल्मों के लिए लिखने के अलावा कहानियां और उपन्यास भी लिखे। इनका नाटक शांतता कोर्ट चालुआ है खासा लोकप्रिय हुआ। घसीराम कोतवाल और सखाराम बाइंडर भी इनके लिखे बहुचर्चित नाटक हैं। निशांत जैसी कई फिल्मों के लिए इन्होंने पटकथा लिखी। इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, कालिदास सम्मान तथा पद्म भूषण आदि कई पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। तेंदुलकर को श्याम बेनेगल की फिल्म मंथन की पटकथा के लिए वर्ष 1977 में राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। आइए आपको सुनाते हैं इसी फिल्म का एक गीत।
Today is also the birthday of the Irish singer-songwriter-musician from Strabane, Northern Ireland, Paul Joseph Brady. His work straddles folk and pop. He was interested in a wide variety of music from an early age. Initially popular for playing Irish traditional music in a duo with Andy Irvine and later with Tommy Peoples, Matt Molloy and solo, he later turned a more rock-inspired electric style with poignant political lyrics. Some of his most popular songs are his interpretation of the traditional Arthur McBride and the original Crazy Dreams, Nothing But the Same Old Story, The Island, Night Hunting Time, Steel Claw and Paradise Is Here. I'm playing a snippet from The World Is What You Make It. Today is also the birthday of Nawazuddin Siddiqui, born on this day in 1974, the Indian actor who works in Hindi cinema. He is the recipient of various accolades, including a National Film Award, IFA Award and 2 Filmfare Awards. I'm playing a snippet of one of his dialogues from The Mountain Man.
Le phir aa gaye sab rajya khush hai tera ko ka lagta tha ki nahi lautenge galat jab tak todenge nahi तब तक छोड़ेंगे।
आज रस्किन बॉन्ड जी का जन्म दिवस है। ये अंग्रेजी भाषा के प्रसिद्ध भारतीय लेखकों में से एक है। इनकी प्रसिद्ध विशेष रूप से बाल साहित्य की रचना को लेकर है। इनकी कहानी सुजैन सेवन हस्बैंड पर सात खून माफ फिल्म का निर्माण हुआ। बाल साहित्य में योगदान के लिए इन्हें पद्मश्री और 2014 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। दोस्तों अब समय आ गया है आपसे विदा लेने का। सरफिरोजी और अनीता आनंद को दीजिए इजाजत कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की।
स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप नेक्स्ट इज समाचार प्रभात अवर हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज एट 8:15। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। हैव अ ग्रेट डे।
नमस्कार।